परम पूज्य गुरुदेव ने आदर्श गांव की जो कल्पना की या ग्राम तीर्थ योजना की जो कल्पना की वो सब उनके साहित्य में उपलब्ध है, लिखा पढ़ा है। आवश्यकता इस बात की है कि जो अब विचार क्रांति अभियान की बहुत बड़ी मंजिल आप लोगों ने पूरी कर ली, तो अब दूसरी क्रांति जो रचनात्मक क्रांति भी कही गई उसकी तरफ तेजी से कदम बढ़ाने के लिए आप साइकिल यात्रा पर निकल रहे हैं। गुरुदेव ने आदर्श ग्राम की जो कल्पना की है उसकी एक परिभाषा दी है उन्होंने, कैसा गांव हो आदर्श ग्राम, स्वच्छ, स्वस्थ, शिक्षित, स्वावलंबी, व्यसन मुक्त, संस्कार युक्त, सहयोग सहकार से भरा पूरा गांव। इसमें जिन बिंदुओं पर आप लोगों ने पहले से ही मास्टरी की हुई है, जैसे व्यसन मुक्त है, संस्कार युक्त है, सहयोग सहकार है, इस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। मैं जो बिंदु रचनात्मक क्रांति के हैं, स्वच्छता, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, मुख्यतः इन तीन बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। स्वच्छता की जब बात आती है तो मैं अपनी बात आम तौर पे गुरुदेव की उस पुस्तक से शुरू करता हूं जो आप लोगों ने अधिकांश ने पढ़ी होगी, जिसका नाम है गंदगी की घृणित असभ्यता। 24 पेज की छोटी सी किताब है, बहुत पीड़ा के साथ गुरुदेव ने उस किताब को लिखा है। गंदगी की घृणित असभ्यता, तीनों शब्द बहुत कठोर इस्तेमाल किए हैं, गंदगी की घृणित असभ्यता। शुरुआत में ही गुरुदेव ने तीन रेफरेंस दिए हैं उस किताब में। पहले प्रश्न पर ही गुरुदेव ने लिखा है कि विलियम वैम्पायर नाम का एक ब्रिटिश नागरिक भारत की लंबी यात्रा पर आता है। यहाँ से जाने के बाद वो अपने संस्मरण लिखता है और भारत की संस्कृति की, यहाँ के रहन सहन की, आतिथ्य सत्कार की भूरी भूरी प्रशंसा करता है, पर एक व्यंग करता आखिर में। वैम्पायर लिखता है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ रात के अंधेरे में भी कोई भटक नहीं सकता। वो कहता है कि यदि आप रात के अंधेरे में भटक गए हैं तो किसी ऊंचे से स्थान पर खड़े होकर के चारों तरफ घूम के सूंघने का प्रयास करें, जिस तरफ से बदबू आ रही हो उस तरफ को चल दें, निश्चित रूप से आप किसी गांव कस्बे में पहुंच जाएंगे। बड़ा कटु है, छोटी सी बात में उसने भारतवर्ष की गंदगी की डेफिनेशन बता दी कि भारतीय लोग जहाँ रह रहे हैं, चाहे वो गांव है या कस्बा है, वो बदबू का ढेर है। उसी प्रश्न में दूसरे पैरे में गुरुदेव लिखते हैं कि गांधी जी से चर्चा की गई कि भारतवर्ष की गंदगी के विषय में आपको क्या कहना है। तो गांधी जी ने कहा, मुझे अब लगता है दिन करीब आ गए हैं जब हम अंग्रेजों को भारत से भगा देंगे, परंतु भारत में गंदगी इस तरह से व्याप्त है कि इसको भगाना मुश्किल है। यानी गांधी जी ने अपने प्रयासों में हाथ खड़े कर दिए, मना कर दिया, मेरे बस की बात नहीं। जयप्रकाश नारायण से रायपुर कांग्रेस में पूछा गया, आपको भारत की गंदगी के विषय में कुछ कहना है? उन्होंने कहा, मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, पर इतना ज़रूर कहूँगा कि हमारा देश दुनिया के सभी देशों से ज़्यादा गंदा है। उन्होंने एक ही वाक्य में भारत को गंदगी का विश्व चैंपियन घोषित कर दिया। मित्रों, ये बातें 50 साल पुरानी हैं, या 60 साल पुरानी है, 70 साल पुरानी है, आज़ादी से पहली हैं। तब से अब तक आबादी 5 गुनी बढ़ी है, तो गंदगी भी 5 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। हम गायत्री परिवार के लोग पवित्रता और स्वच्छता को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं, परंतु अभी तक भी हम ये कहने में असमर्थ हैं कि हमारे गांव या हमारे गांव, कस्बे या शहर स्वच्छ हो गए। आज भी यदि दुनिया में सब तरफ हमारी तारीफ होती है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर तारीफ होती है, मेडिकल साइंस में तारीफ होती है, तो स्वच्छता के बारे में आज भी वही कमेंट हैं लोगों के जो 50 साल पहले थे। तो इसका समाधान क्या है? इस समाधान पे मिशन बराबर कार्यरत है, काम कर रहा है। आप लोग देखते हैं, शांति कुंज हो, चाहे ब्रह्म बर्जस हो या गायत्री कुंज हो, वो अपेक्षाकृत दूसरी जगहों से ज़्यादा स्वच्छ है। यही नमूना जो यहाँ पर है, उसको हम लोग गांव-गांव यदि पहुँचा सकें, हर मोहल्ले हर कस्बे में पहुँचा सकें, तो शायद ये बातें सुनने को हमें नहीं मिलेंगी। क्या है व्यवस्था? आप लोग यहाँ देख रहे होंगे, सब जगह डस्टबिन लगे हुए। हम लोग पिछले 3 वर्षों से अपना कोई कूड़ा नगर पालिका को नहीं देते, किसी भी प्रकार का। घरों में 2-2 प्रकार के डस्टबिन हैं, एक में गलने सड़ने वाला कूड़ा, एक में ना गलने सड़ने वाला कूड़ा। दोनों को अलग अलग इकट्ठा करते हैं। जो गलने सड़ने वाला कूड़ा नहीं है, उसको कबाड़ी को रिसाइकलिंग के लिए बेच देते हैं। जो गलने सड़ने वाला कूड़ा है, उसकी कंपोस्टिंग करते हैं, वो सारा कूड़ा गौशाला में जाता है। यहाँ का सभी प्रकार का कूड़ा गौशाला जाता है, वहीं पर इसको अलग अलग करके हम जो गलने सड़ने वाला है उसकी कंपोस्टिंग करते हैं। कौन सी कंपोस्टिंग करते हैं? हम लोग केंचुआ खाद तैयार करते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग। आप में से बहुत से लोग जो यहाँ पहले से प्रशिक्षण लेके गए होंगे, केंचुआ खाद पे काम कर रहे होंगे, क्योंकि ये प्रशिक्षण यहाँ सन 2000 से बराबर चल रहे हैं। क्या है केंचुआ खाद, क्यों हम उसे बनाए, इसके बारे में 5 मिनट का समय लगाऊंगा। जिस केंचुए से हम खाद बना रहे हैं, केंचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट, वो विशेष प्रकार का केंचुआ है। वो साधारण वो वाला केंचुआ नहीं है जो बरसात में पानी में निकलता है। यूँ तो केंचुए 5000 किस्म के हैं, पर उनको हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। एक कैटेगरी केंचुए की वो है जो ज़मीन में सीधा सुराख करता हुआ चला जाता है, 40 फीट की गहराई तक केंचुआ ज़मीन में जा सकता है। वो सुराख करता है, ड्रिल करता है, इसलिए करता है कि बारिश होगी तो बारिश का पानी धरती में समा सके जल संरक्षण के लिए। दूसरी वैरायटी केंचुए की वो है जो ज़मीन में पैरेलल चलता है, 9 इंच की गहराई तक काम करता है, वो ज़मीन की जुताई करता है। और ये तीसरी किस्म का केंचुआ है जो ज़मीन में नहीं जाता, ज़मीन के ऊपर रह करके कूड़े करकट को कंपोस्ट बनाता है। आम तौर पे वनों में ये बहुत तहत में पाया जाता है, जहाँ पर पत्तियाँ गिरती रहती हैं उन पत्तियों को खा करके कंपोस्ट बनाता है केंचुआ। इस केंचुए की दो खास बात हैं जिस वजह से हम लोग इसको सन 2000 से यहाँ बढ़ावा दे रहे हैं। पहली खास बात यह है कि ये केंचुआ अपने वजन के बराबर रोजाना भोजन कर सकता है, और दूसरी खास बात यह है कि यह परिवार की वृद्धि बहुत तेजी से करता है। इन दो विशेषताओं की वजह से ही इसको हमने कूड़े करकट के निस्तारण के लिए चुना है। आप कल्पना करें, ये वैसे तो परिवार को अपने हजारों गुना बढ़ा लेता है साल भर में, पर जो लोग केंचुए में काम कर रहे हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि लगभग लगभग 100 गुना एक साल में बढ़ जाता है। तो यदि कोई आदमी 1 किलो केंचुआ लेकर के अपने गांव में केंचुआ खाद बनाना शुरू करता है तो साल भर में कितना हो जाएगा? 100 किलो, यानी 1 कुंटल। तो 1 कुंटल केंचुए को कितना खाना चाहिएगा कूड़ा? 1 ही कुंटल रोजाना। और अगले साल में 1 साल बाद कितना हो जाएगा? ये 100 कुंटल। 1 कुंटल को 100 से गुणा करेंगे, यानी 2 साल में ही 1 किलो जो केंचुआ गया था गांव में उसकी तादाद हो गई 100 कुंटल। तो अब इसको 100 कुंटल रोजाना कूड़ा चाहिएगा, तो 100 कुंटल कूड़ा एक मोहल्ले भर में तो नहीं मिलेगा, गांव भर का इकट्ठा करना पड़ेगा। यानी 1 किलो केंचुआ यदि आप आज लेके जाएं तो 2 साल बाद ही इसको लगभग लगभग 100 कुंटल कूड़ा आपको रोजाना देना पड़ेगा, और 3 साल बाद की तो अब गुणा ही ना करो, ज़्यादा 1000 टन हो जाएगा, यानी 100 ट्रक, ठीक है ना। तो 1 किलो भर केंचुआ इतने लिए जिम्मेदार है कि वो 2 साल बाद पूरे गांव के कूड़े को खाने की स्थिति में होगा। इन 12 सालों में 2000 से 2012 तक हमारी स्थिति आज ये है कि जो बच्चे ले जा करके यहाँ से केंचुआ पालन कर रहे हैं उनके पास इतना केंचुआ है कि पूरे भारतवर्ष के गलने सड़ने वाले कूड़े को खाने की स्थिति में है। आपका मात्र संदेश इतना भर है कि आप कूड़े को केंचुए से मिला दें, जहाँ कूड़ा है वहाँ केंचुआ पहुँचा दें, जहाँ केंचुआ है वहाँ कूड़ा पहुँचवा दें, इतना भर करना है। पर इस काम को भी कोई क्यों करेगा? स्वच्छता के लिए तो केवल नहीं करेगा कि मुझे सफाई करनी है, इसीलिए करना होता तब तो अब तक पूरा हिंदुस्तान साफ हो गया होता। अपना कोई स्वार्थ उसमें जब तक नहीं जुड़ेगा तब तक कोई केंचुआ नहीं पालेगा। आम तौर पे अभी तक तो कूड़ा फ्री मिल रहा है, पर जिन जगहों पे केंचुआ खूब पहुंच गया है, जो लड़के 10-12 साल से वहां काम कर रहे हैं, वहाँ अब केंचुआ हमको फ्री नहीं, ये कूड़ा फ्री नहीं मिलता, घरों से कूड़ा खरीदना पड़ रहा है। और वो कूड़ा हमको कॉस्ट करता है 30-35 पैसे किलो, जैसे घर में अखबार भी बेचते हैं ना, रद्दी बेचते हैं, अखबार तो फ्री नहीं बांटते ना, अभी पढ़े हुए अखबार को कबाड़ी को बेचते हैं, पैसा लेते हैं, मोल भाव करते हैं। ऐसे ही अब जहाँ पर केंचुआ पालन हो रहा है वहाँ कूड़ा फ्री नहीं मिल रहा, कूड़ा खरीदना पड़ रहा है। 30-35 पैसे किलो हमको कूड़ा मिलता है। 2 किलो कूड़े से 1 किलो खाद बनती है, यानी 60-70 पैसे का रॉ मटेरियल केंचुआ खाद बनाने में लग रहा है। 20 पैसे उस पर मजदूरी आ जाती है, तो लगभग लगभग 1 रुपया किलो वर्मी कंपोस्ट की प्रोडक्शन कॉस्ट है जहाँ पर कूड़ा खरीदा जा रहा है। और इस 1 रुपया किलो की जो खाद है उसका बिक्री मूल्य है कम से कम 3 रुपये किलो, यानी 2 रुपये किलो का लाभ है इस काम को करने में। तो यदि कोई छोटी सी यूनिट लगा लें, 1000 किलो भी रोज़ाना हम खाद बना लें, तो 2000 रुपये रोज़ दहाड़ी हमारी मजदूरी मिल जाएगी। उतने में कम से कम ब्राह्मणोचित जीवन तो चली जाएगा। ये छोटा सा काम है, बिना किसी पैसे के शुरू होने वाला काम, और इसमें अभी भारतवर्ष में हमारे साथ लगभग 50-60 हज़ार बच्चे काम कर रहे हैं, पर 3 करोड़ लोगों की आवश्यकता है। इस भारत को साफ करने के लिए लगभग लगभग 3 करोड़ लोगों की आवश्यकता है। तो क्या मतलब हुआ कि बेरोजगारी निवारण का एक बड़ा सूत्र है। आप क्षेत्र से कितने भी बच्चों को भेज दें जो बेरोजगार हों और यहाँ उन्हें ट्रेनिंग करा दें शांतिकुंज में और वो केंचुआ पालन कर लें, तो उनके लिए ये घर बैठे रोजगार है, क्योंकि उसके लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और क्या काम करेगा ये? सबसे बड़ा काम ये करेगा, जो स्वच्छता अभियान है वो हुआ, रोजगार हुआ, और तीसरा एक बड़ा काम है कि ये खाद केमिकल फर्टिलाइजर का विकल्प है, रासायनिक खाद का विकल्प है। जितने न्यूट्रिएंट्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए पौधे को, वो सारे वर्मी कंपोस्ट के अंदर हैं। कितना केमिकल फर्टिलाइजर लगा रहे हैं हम? लगभग लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का केमिकल फर्टिलाइजर भारतवर्ष में प्रतिवर्ष लगता है। और यदि आप सारे गलने सड़ने वाले कूड़े को वर्मी कंपोस्ट में बदल सकें, तो आप यकीन माने आपको एक दाना केमिकल फर्टिलाइजर की आवश्यकता नहीं है। पर अभी हम क्या कर रहे हैं? कहीं पत्ते इकट्ठे हुए तो आग लगा दी, या फिर नदी नालों में बहा दिया। यदि इसी को आप खेत तक पहुंचा सकें कंपोस्ट बना के, तो ये 2 लाख करोड़ रुपए का रासायनिक खाद प्रतिवर्ष जो आप लगा रहे हैं, उसकी बचत कर सकता है केंचुआ। और यही नहीं, रासायनिक के जो साइड इफ़ेक्ट हैं, जो आप रोज ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर रहे हैं, यदि आप इस सारे कूड़े को कन्वर्ट कर सकते हो, तो पूरा देश ऑर्गेनिक प्रोड्यूस करने वाला देश होगा। पूरा देश में ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी, कहीं आपको फिर सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मित्रों, एक छोटा सा संदेश, जहाँ कहीं भी आपकी यात्रा रुके, वो वर्मी कंपोस्ट के विषय में, केंचुआ खाद के विषय में, इसकी एक पुस्तक भी यहाँ उपलब्ध है, और इसकी ट्रेनिंग जो रचनात्मक प्रकोष्ठ में या ग्राम प्रबंधन में 9 दिन के सत्र होते हैं, रचनात्मक के हर महीने की 9 तारीख तक, उसमें ये ट्रेनिंग उपलब्ध है। किसी भी बच्चे को किसी भी समय केवल इसी काम के लिए भेजना चाहेंगे, तब भी उसको प्रशिक्षण मिल जाएगा। तो जहाँ कहीं से भी आपको स्वच्छता की बात समझ में आए तो, और यदि बेरोजगार बच्चे मिले तो उनको निश्चित रूप से इस कार्यक्रम के लिए भेजें। सफाई अभियान में ही एक दूसरा मुद्दा और बहुत बड़ा है, वो है खुले शौचालय। भारत सरकार, यूनाइटेड नेशन, यूनिसेफ, सारी चीज़ें मिलकर के एक अभियान चला रही हैं, सर्व स्वच्छता अभियान गांव-गांव चल रहा है। उसमें शौचालय बना रहे हैं और शौचालय के साथ में कहीं सिंगल पिट और कहीं डबल पिट का प्रोविजन है। गड्ढा कौन सा बना रहे हैं? जालीदार, 1 मीटर डाया, 1 मीटर गहरा, जाली भर के, नीचे कच्चा, इसलिए कि जो भी मलमूत्र उसमें जाए वो ज़मीन में सोख ले। मित्रों, यदि 10 साल पहली बात याद हो तो एक नॉर्म था कि हैंडपम्प आप लगाएंगे जहाँ पर शौचालय गड्ढा हो उससे 100 फीट दूर, 30 मीटर का। अब वो नॉर्म घटा करके, क्योंकि गांव में आबादी बढ़ गई, घर नज़दीक नज़दीक हो गए, तो वो 30 मीटर जगह तो हाथ ही नहीं आ रही हैंडपम्प कहाँ लगाएंगे, वो नॉर्म घटा के कर दिया 10 मीटर, कि 10 मीटर फासला होना चाहिए सोख पिट से हैंडपम्प का। यदि ये फासला नहीं हुआ तो सोख पिट का पानी हैंडपम्प में आना शुरू हो जाएगा। आप कल्पना करें, यदि पूरे गांव में ये सोख पिट बन गए तो फिर क्या कोई जगह ऐसी बचेगी हैंडपम्प लगाने वाली? नहीं बचेगी। और इसी के लिए कहते हैं, यदि सोख पिट का पानी हैंडपम्प में आने लगे तो हेपेटाइटिस बी नाम की बीमारी, यानी लीवर खराब होने की बीमारी सबसे पहले होती है। समाधान क्या है? इसका एकमात्र समाधान है, गुरुदेव ने 50 साल पहले अपनी पुस्तक हमारे गांव का कायाकल्प कैसे हो उसमें लिख दिया है। गुरुदेव ने सूत्र दिया है कि गांव में मलमूत्र को गोबर के साथ मिलाकर के बायोगैस प्लांट चलेंगे, यानी जो गोबर गैस प्लांट या बायोगैस प्लांट हम लोग गांव में लगा रहे हैं, उन्हीं से हम यदि शौचालय को जोड़ें तब फिर आप इस समस्या से बच सकते हैं। समस्या केवल यही नहीं है कि आपका ग्राउंड वाटर या जमीन का पानी है वो गंदा होगा, उससे भी बड़ी एक समस्या है। उससे बड़ी समस्या यह है कि हम इस मलमूत्र का कर क्या रहे हैं। 120 करोड़ की आबादी है, यदि औसतन मनुष्य मूत्र की ही बात करें, 2 लीटर का भी एवरेज लें, तो 240 करोड़ लीटर मनुष्य मूत्र भारतवर्ष में रोजाना उपलब्ध है। क्या है ये? यूरिन, यूरिया से बना है? यूरिया यूरिन से बना है या यूरिन यूरिया से बना है? नाइट्रोजन है इसमें, खेत के लिए उपयोगी है। 240 करोड़ लीटर की बात समझ में नहीं आती, कुछ समझ में नहीं आएगा कितना होगा। यदि हम टैंकर की बात करें जिसमें डीजल पेट्रोल ढुलता है, जिसमें 10,000 लीटर आता है, तो ऐसे 2,40,000 टैंकर प्रतिदिन मनुष्य मूत्र भारतवर्ष में उपलब्ध है। एक तरफ 400 रुपया दे करके 50 किलो का यूरिया का कट्टा सिर पर रख के लाते हैं, और दूसरी तरफ अपने पास जो लिक्विड यूरिया उपलब्ध है उसको किस काम में ले रहे हैं। शहर में तो फ्लश में डाला और नदी के हवाले कर दिया, जो पवित्र नदी बह रही होगी उसको वहाँ मलमूत्र दोनों चीज़ मिला करके अर्पित कर दिए कि जाओ आपके लिए हमारे पास यही सामान है। गांव में क्या कर रहे हैं, पड़ोसी की दीवार रंग रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सबको मालूम है गांव में रहने वाले को कि मनुष्य मलमूत्र कितना उपयोगी है खेत के लिए, कोई अनभिज्ञ नहीं है, पर उसका समाधान नहीं सोच रहे। क्या मलमूत्र मनुष्य का खेत के लिए उपयोगी है या नहीं है, इससे सहमत हैं? उपयोगी है तो फिर उसको इस तरह से क्यों बर्बाद कर रहे हैं? गुरुदेव ने उसका समाधान दिया है, बायोगैस प्लांट। बायोगैस प्लांट के माध्यम से मनुष्य मलमूत्र आपके प्लांट में जाएगा और सिलरी के रूप में जो गोबर के साथ निकलता है ये 45 दिन तक इस डाइजेस्टर में पड़ा रहता है, उसे आप पता नहीं लगा सकते ये गोबर का सिलरी है या मनुष्य के मलमूत्र की सिलरी है। उसमें ना कोई दुर्गंध होगी ना उस पर मक्खी बैठेगी। क्या लाभ होगा उससे? सारा मलमूत्र जो खेत को जाना चाहिए था वो खेत में पहुंच जाएगा और बाय प्रोडक्ट के रूप में आपको ईंधन मिलेगा, गैस मिलेगी। कौन सी गैस? बायोगैस, जो आपके लिए ईंधन और रोशनी दोनों की आवश्यकता पूर्ति करेगा। पिछले 50 साल से भारत सरकार गोबर गैस प्लांट लगाने का कार्यक्रम कर रही है, तरह तरह की सब्सिडी तरह तरह की छूट भी दे रही है, परंतु केवल गुजरात प्रदेश को छोड़ करके सभी प्रदेशों में 70-90% प्लांट बंद पड़े हैं। जो प्लांट लगे भी हैं, पहली बात तो लगे बहुत कम, लगे हैं तो बंद हो गए। क्यों बंद हो गए? या तो ना जानकारी या आलस्य, गोबर घोलने का आलस्य है। गुजरात प्रदेश केवल ऐसा प्रदेश है जहां मैंने बहुत सर्वे किया और बहुत कोशिश की है ढूंढूं कि कहीं बंद प्लांट मिल जाए, मुझे गुजरात में कोई प्लांट बंद नहीं मिला। तो भाइयों, इस बायोगैस प्लांट का संदेश भी आप अपनी साइकिल यात्रा में जोड़ें, इसके महत्व को समझें। यदि आप कूड़े कचरे की वर्मी कंपोस्ट और चाहे तो पशुओं का गोबर है या मनुष्यों का मलमूत्र है, इसको बायोगैस में प्रयोग कर लें तो इतनी कंपोस्ट और इतनी खाद आपको मिल जाएगी कि निश्चित रूप से आप मान लें कि आप केमिकल फर्टिलाइजर से मुक्ति पा सकते हैं। तो कुछ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बचेगी, कृषि की लागत कुछ कम होगी, निश्चित रूप से कम होगी यदि खाद खरीदना बंद कर दें। बायोगैस में जो ईंधन आपको मिलता है वो वही है जो एलपीजी गैस है। अब तो एलपीजी भी शायद 400 रुपए की हो गई सिलेंडर, तो यदि ये भी आपको बचत हो जाए, ईंधन और रोशनी का आपको जवाब मिल जाए, तो ये दूसरा, चाहे उसे बोनस कहें या लाभ कहें, दूसरा लाभ होगा आपको बायोगैस प्लांट का, यानी स्वच्छता, शौचालय और फर्टिलाइजर, ईंधन और रोशनी, चार चीज एक ही चीज से मिल रही हैं। तो इसमें क्यों ना हम लोग बढ़ चढ़ के इसका प्रचार प्रसार करें। जगह जगह जब भी आप बात करेंगे तो एक प्रश्न आएगा आपके सामने, वो आएगा कि हमारे पास में आवश्यकता नहीं तो है पर जगह नहीं है। गांव में अब घर पास पास हो गए, गोबर गैस प्लांट लगाने की जगह हर किसान के पास अब नहीं है। जहाँ भी हम जाते हैं गोबर गैस प्लांट लगवाने, वहाँ ये बात सुनने को मिलती है। तो वहाँ भी एक इलाज है, जिनके पास जगह है वो बनाए, परंतु शौचालय की सुविधा पड़ोसियों को भी दें, अपना ही शौचालय ना बनाए, साथ में मोहल्ले में यदि दो घर तीन घर चार घर आपसे इस्तेमाल करना चाहते हैं शौचालय, उनके लिए भी एक एक शौचालय बना के उसकी चाबी उनको पकड़ा दें कि सफाई आप अपने की अपने आप करो, आप इसको प्रयोग करो। क्यों करेंगे आप? केवल इसलिए नहीं करेंगे कि पड़ोसी का लाभ होगा, आपको मुफ्त में कच्चा माल मिलेगा, आपको ये मलमूत्र मुफ्त में मिल रहा है, आपको खाद मुफ्त में मिल रहा है, आपको गैस मुफ्त में मिल रही है, इसलिए आप करेंगे। आप देखते हैं सुलभ शौचालय बने हुए हैं शहरों में, सुलभ शौचालय वाले बायोगैस प्लांट चलाते हैं उससे, और गैस बेचते हैं खाद भी बेचते हैं, और ऊपर से मजे की बात यह है कि आप कच्चा माल भी दे के आते हैं और पैसे भी दे के आते हैं, नहीं देते फ्री में नहीं, वो सेवा देते ना, वो पैसा चार्ज करते हैं। और ऊपर से सबसे मजे की बात यह है कि जो भाई जिन्होंने इस स्वच्छ काम का बीड़ा उठाया, पूरे भारतवर्ष में सुलभ शौचालय प्रदान किए, वे क्या नाम है उनका, बिंदेश्वरी पाठक पंडित जी हैं, और शौचालय काम कर रहे हैं। और अभी जब आप जाएंगे किसी किसान के घर ये कहने कि चलो आप बायोगैस के साथ शौचालय लगा लो, तो सबसे पहला सवाल यही उठेगा, इसके तो ईंधन में खाना बनाना। खैर, उन सब चीज़ों का जवाब देने के लिए आप पर्याप्त हैं, मैं उस विषय में डिटेल में नहीं जाऊंगा, समय कम है। तो ये दूसरा विषय हुआ बायोगैस का। इस बायोगैस के साथ ही जुड़ा हुआ है गोबर, और गोबर से ही जुड़ा हुआ है गोपालन। आपकी साइकिल यात्रा में गोपालन का जिक्र ना हो तो यात्रा अधूरी रह जाएगी, क्योंकि भारतवर्ष में गौ गंगा गायत्री के बिना बात अधूरी है। आज की स्थिति यह है, जहाँ भी आप जाएंगे समस्या पूछें गांव की, बहुत सारी समस्याओं के साथ में एक समस्या जरूर बता देंगे बेरोजगारी की, कि गांव में बेरोजगारी बहुत है। क्यों है बेरोजगारी? क्योंकि हमारा नवयुवक कृषि और पशुपालन दोनों से ही विमुख हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं बन रही, आर्थिक रूप से ना ही तो कृषि और ना ही पशुपालन, दोनों चीज कमजोर पाई जा रही हैं। और इन दोनों के कमजोर होने से जो इस धरती पे दाता है, जो देवता है, वो भिखारी की भूमिका में खड़ा हुआ है। दुनिया में कोई आदमी कोई भी रोजगार करता हो, चाहे वो कहीं नौकरी करता है, चाहे वो कारखाना चलाता है, चाहे वो कारें बनाता है, चाहे हवाई जहाज बनाता है, खाना सब खाते हैं। और खाना कहाँ से आएगा? किसान से। खाना ऐसी चीज है जो किसान के अलावा कहीं पैदा ही नहीं होता। किसी कारखाने में गेहूं नहीं पैदा होते, किसी कारखाने में धान पैदा नहीं होता। और सारा कुछ वो जो कर रहा है काम, वो रोटी के लिए कर रहा है। और रोटी आपके पास है, किसान के पास है, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज वो पैदा कर रहा है। और सबसे ज्यादा भिखारी की हालत में है, आत्महत्या करने को मजबूर है। तो उसको दाता का दर्जा बनाने के लिए, यदि घाघ की पुरानी कहावत जब उल्टी पड़ रही है, क्या थी? उत्तम खेती मध्यम पान, निश्चित चाकरी भीख निदान। अब तो उत्तम कुछ और ही हो गया, खेती उत्तम नहीं बची। इसको फिर से उत्तम बनाने के लिए दो ही सूत्र हैं कि कृषि को गौपालन से जोड़ा जाए। गौपालन कौन सा? ये वाला गौपालन नहीं जो हम कर रहे हैं। हम गौपालन नहीं कर रहे, हम तो गाय को सही माने में कलंकित कर रहे हैं। गौपालन नहीं हो रहा है। आप यदि अपने पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की एक किताब है विजन 2020, विजन 2020, आप में से बहुत से लोगों ने पढ़ी होगी, उसमें उन्होंने गौपालन का जिक्र किया। मिसाइल मैन ने जो आदमी स्पेस रिसर्च का आदमी है, वो गाय का जिक्र कर रहा है। और उसमें लिखा है कि दुनिया में किस देश की गाय कितना दूध देती है। तो उसमें एक तालिका दी, उन्होंने एक चार्ट बना के दिया है। उस तालिका में सबसे ऊपर नाम है इज़राइल का, और उसके आगे लिखा है कि एक वर्ष में 10,000 लीटर दूध का औसत है इज़राइल का। यानी प्रति गाय एक वर्ष का दूध का उत्पादन है 10,000 लीटर, जो दुनिया में सबसे अधिक है। उसके बाद नाम आता है डेनमार्क का, कनाडा का, अमेरिका का और लैटिन अमेरिका का। मित्रों, आपको ताज्जुब यह होगा कि इज़राइल में जो गाय है वो भारतीय गाय है, गिर नस्ल की, जो गुजरात की गाय है, कच्छ की गाय है। इज़राइल में कोई पशुपालन नहीं था। इज़राइल तो रेगिस्तान है। कितनी बारिश होती है इज़राइल में? दुनिया में सबसे कम बारिश का देश है इज़राइल, 7 इंच बारिश होती है। उन्होंने कहा कि हम किस देश से गाय लेके आए जो हमारी क्लाइमेट को सूट करे। तो जगह भारतवर्ष में है कच्छ, जहाँ 7 इंच बारिश होती है, जहाँ रेगिस्तान है। इस गिर नस्ल को लेके गए और पूरे देश में इज़राइल में केवल गिर गाय गए, और गिर को उन्होंने विकसित किया। और अब उसका औसत दूध का प्रोडक्शन है 30 लीटर प्रतिदिन। हम लोग 3/4 भारतवर्ष में अब गाय का दूध लीटरों में नहीं बताते, पाव में बताने लगे, 2 पाव, 3 पाव, 5 पाव, 3/4 भारत की स्थिति आज ही है। क्यों है? क्योंकि हम पिछले 100 सालों से गाय की नस्ल बिगाड़ कार्यक्रम में लगे हुए। क्या हो रहा है नस्ल का? अपने घर पे भी 5 गाय हैं, दी आप ये नहीं बता सकते कौन सी नस्ल की गाय है। क्या ऐसा देसी है? उसका आता पता ही नहीं कुछ। क्यों नहीं आता पता? कि जो गांव में सबसे खराब बछड़ा होता था, जो बैल बनने लायक नहीं था, जो हल में नहीं चल सकता था, उसको हमने सांड छोड़ दिया। वो सारे गांव की गाय को ज्ञापन करने की जिम्मेदारी सबसे खराब बछड़े को दे दी। ये काम आज से नहीं हो रहा, 100 साल से हो रहा है। तो जो गाय आपकी 20-30 लीटर वाली गाय थी, वो आज 2-3 पाव पे आ गई, 4 पाव पे आ गई। मित्रों, अब ये आपातकाल है इस समय गाय के लिए, इमरजेंसी है। यदि अब से आपने उस गाड़ी को रिवर्स नहीं दौड़ाया, इस नस्ल बिगाड़ कार्यक्रम को नस्ल सुधार कार्यक्रम में नहीं बदला, तो आप निश्चित मान लें अभी तक तो थोड़ा बहुत दूध इतना है कि पीने लायक दूध तो भारतवर्ष में नहीं बचा। यदि सब के सब लोग कान में डालने लगे तो इतना दूध अभी है। हम अपने बच्चों को दूध के लिए यही बता पाएंगे कि दूध नाम की चीज एक होती थी, दूध पिला नहीं सकते। इसका क्या परिणाम हो रहा है? कुपोषण। शाकाहारी भोजन में यदि दूध दही घी नहीं है तो फिर पोषक तत्व की बात ही क्या करेंगे? इन सफेद बालों वालों ने तो जो खाना पीना था खा पी लिया, मगर अगली जनरेशन के लिए कुछ नहीं छोड़ा। लोगों के पास पैसा तो है भी, पर उस पैसे से दूध तो नहीं खरीद सकते हो। रोज अखबारों में आप पढ़ रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं कि नकली दूध, मशीन का बना दूध उपलब्ध। मित्रों, यदि अपनी अगली जनरेशन को बचाना है तो दूध का प्रोडक्शन कम से कम इतना तो हो कि गांव के बच्चे तो कम से कम भर पेट दूध दही घी खा सकें, नहीं तो वही हाल होगा जो आज की तारीख में है कि बचपन से सीधा आदमी बुढ़ापे में प्रवेश कर रहा है, बीच का जो पीरियड था 25 साल का जवानी का, वो गायब हो गया, वो है ही नहीं कहीं। पूरे भारत की हालत यही है, जहाँ दूध पैदा हो रहा है वो पूरा का पूरा दूध बेच रहे हैं। गांव में दूध का कंजम्पशन खत्म हो गया। गांव में जाके यदि आप दही मक्खन की बात करें तो वो सपनों की बात होती चली जा रही है। 10-15% घरों में भी दही मक्खन का गांव में नाम नहीं बचा, सारा का सारा दूध बिक रहा है, जो कुछ बचा है उसकी चाय बना के पी ली। तो मित्रों, यदि अपने बच्चों को आप बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी कारें, मोटरसाइकिलें दें, उन्हें चलाने लायक उनके शरीर में हांगा भी छोड़ें, वो इस लायक तो बचें कि उन कारों को चला सकें। अब वो तभी होगा जब उन्हें कम से कम भरपेट दूध दही मिल सके। इसके लिए 2 ही सूत्र हैं जो आपको घर घर जाके देने हैं, गाय का नस्ल सुधार और चारा सुधार। आधा भारत गाय को चारा नहीं खुलाता, उसको उसके हाल पे छोड़े रखता है। सुबह खोल दिया, शाम तक उसे कुछ मिला मिला, नहीं मिला तो मालूम नहीं। आधे भारत को भी हरे चारे के बारे में जानकारी नहीं। मित्रों, गाय को 365 दिन इस भारतवर्ष में हरा चारा मिल सकता है। हमारी जलवायु, हमारी ज़मीनें, हमारी वर्षा इस तरह की है कि हम 365 दिन गाय को हरा चारा दे सकते हैं। कैसे दें, इसका प्रशिक्षण लगातार हम लोग चलाते हैं। एक किताब भी है इसकी, छोटी सी, गौशाला संदर्शिका। उसमें चारे के बारे में, नस्ल सुधार के बारे में, बायोगैस के बारे में पूरा दिया हुआ है। फिर भी जिन लोगों को आप प्रशिक्षण के लिए भेजना चाहें तो विभाग में 9 दिन के रचनात्मक सत्र चलते हैं, हर महीने की पहली तारीख से 9 तारीख तक, और कार्यकर्ताओं के लिए एक 45 दिन का सत्र है जो मई को छोड़ के आगे चलता है, अब जुलाई से शुरू होगा, जुलाई में, सितंबर में, सितंबर बाद नवंबर में। उसमें आप सीनियर कार्यकर्ताओं को भेज सकते हैं, और एक साल का यूनिवर्सिटी का पाठ्यक्रम कोर्स है ग्राम प्रबंधन का, जिसमें 12वीं क्लास बच्चों को भेज सकते हैं। और इन सब की जानकारी के लिए हमारे भाई लोग यहाँ बरामदे में बैठे हुए हैं, जो लोग रजिस्ट्रेशन कराना चाहेंगे इन कोर्सेज के लिए वो करा सकते हैं, यहीं पर ये सुविधा उपलब्ध है। तो मित्रों, इस सब की विस्तृत जानकारी, गाय को चारा कैसे दें और गाय को नस्ल सुधार कैसे करें, ये दो सूत्र आपको जन जन तक पहुंचाने हैं। इतना ही नहीं, इस विषय पे एक और छोटी सी जानकारी है, वो है कि हमारी देसी गाय का जो गोबर और गौमूत्र है वो भी बहुत उपयोगी है, बहुत सी बीमारियों में वो काम आता है। क्या काम आता है, कैसे उससे दवाई बनाएं, इसका प्रशिक्षण भी इन सारे कोर्सेज में दिया जाता है कि गोबर गौमूत्र का उपयोग कैसे करें, उससे कौन कौन सी दवाई बन सकती हैं, कैसे बन सकती हैं, इस सब का प्रशिक्षण भी यहाँ उपलब्ध है। जो 9 दिन और 45 दिन के सत्र हैं ये रचनात्मक के सत्र हैं, शांति गुंज के सत्र हैं, ये निःशुल्क हैं। जो एक साल का यूनिवर्सिटी का कोर्स है उसमें शुल्क देना पड़ता है। इस गोबर गौमूत्र की भी मैं छोटी सी बात बता दूं, हमारी गौशाला में इस टाइम लगभग 175 गौवंश है, और हम उस गौशाला का समस्त खर्चा केवल और केवल गोबर और गौमूत्र से जो दवाइयाँ बनती हैं उससे निकालते हैं। 175 गायों को जिस ढंग से रखे हुए हैं हम, वो आप लोग सभी गौशाला देखे हुए होंगे। मैं समझता हूँ इससे और अच्छी देखभाल कमी जगहों पे हो पाती होगी। हमारी गाय जो पानी पीती हैं वो वही पानी पीते हैं कि उनकी नांद में से आप पानी पी सकते हैं। उनके रहने की जो जगह है उसी में बैठ के जितने हमारे गौ सेवा के सब भोजन वहीं करते हैं, उसकी सफाई का ये स्तर है। गायों का स्वास्थ्य आपको नज़र आता है कैसा है। तो कोई भी गौशाला कहीं भी चल रही है, अधिकांश गौशालाएं चंदे पर चल रही हैं, और गौवंश की स्थिति दयनीय है। उन सब के लोगों तक, प्रबंधकों तक आपका ये संदेश चला जाए कि मिशन में इसकी व्यवस्था है प्रशिक्षण की, गोबर गौमूत्र से आप क्या बना सकते हैं, कितना बना सकते हैं, और यदि दूध पूरी गौशाला में एक बूंद भी नहीं है तब भी वो गौशाला स्वावलंबी गौशाला होगी, ये प्रशिक्षण यहाँ पूरी तरह से उपलब्ध है। तो मित्रों, मैं गाय के चैप्टर को यहीं बंद करता हूँ। एक ही संदेश इसमें है कि गाय भी इकोनॉमिकली वायबल है, आर्थिक रूप से गाय अपने ही आपको नहीं पालती, आपके परिवार को ही पाल सकती है। यानी स्वावलंबन का इस देश के लिए सबसे बड़ा सूत्र है गौपालन। जो लोग गौपालन को अपना के स्वावलंबन अपनाना चाहें, उनके लिए प्रशिक्षण की पूरी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। अब एक सूत्र और छोटा सा, 15 मिनट का समय है। हम लोग स्वावलंबन में गुरुदेव के समय से ही बहुत सारे प्रयोग करते रहे हैं। यहाँ पर स्किन प्रिंटिंग, अगरबत्ती, साबुन, डिटर्जेंट, लेमिनेशन, फोटोग्राफी, सिलाई, ये तमाम स्वावलंबन की विधाएं बहुत समय से चल रही हैं। गुरुदेव ने गांव के लिए कुटीर उद्योग पर विशेष जोर दिया है। बहुत सारे कुटीर उद्योगों में, एक कुटीर उद्योग गुरुदेव ने शुरू कराया था अपने टाइम में ही, मधुमक्खी पालन। इस कार्य को मिशन ने बड़े रूप में शुरू किया। बीच में एक बार यहाँ कुंभ के दौरान में दवाई छिड़कने के टाइम पे मधुमक्खियाँ मर गई थी, तो बीच में गैप रहा। फिर से 95 से शुरू किया दोबारा ये काम, और अब इस काम को बहुत बड़े स्तर पर मिशन के द्वारा कराया जा रहा है। क्या है मधुमक्खी पालन? आप में से बहुत से लोग कर रहे होंगे, बहुत से लोगों ने देखा होगा, क्षेत्रों में ये काम बड़े स्तर पर हो रहा है, परंतु अभी भी बहुत गुंजाइश होना बाकी है। मधुमक्खी पालन के बारे में मैं थोड़ी सी बात बताऊंगा। लकड़ी के 1.5 फीट बाई 1.5 फीट के डब्बे में मधुमक्खी पाली जाती है, जिसकी लागत है लगभग 3,000 रुपये। उस एक डब्बे से हमको 60-70 किलो शहद मिलता है साल भर में, जिस डब्बे की लागत है 3,000 रुपये, उससे 60-70 किलो शहद की प्राप्ति होती है। शहद के अलावा दूसरी चीज़ इससे मिलती है कि मधुमक्खी भी अपना परिवार काफ़ी तेज़ी से बढ़ाती है। साल भर में लगभग 4 गुना संख्या हो जाती मधुमक्खियों की। यानी जो एक डब्बा मधुमक्खी है आपके पास में, तो साल भर में 4 डब्बे बन जाते हैं। तो उसमें जो 2,500 रुपये की मक्खियां हैं, वो 4 गुना हो गई, तो 7-8 हज़ार रुपये की मक्खी बढ़ जाती हैं एक साल में 3,000 के डब्बे से। तो 7-8 हज़ार रुपये की मक्खी मिल जाती हैं और 3-4 हज़ार रुपये का शहद मिल जाता है। यानी 10-11 हज़ार रुपये का सामान मिल जाता है मधुमक्खी एक डब्बे से एक साल में। उस पर यदि खर्च लगाएं तो नेट सेविंग हो जाती है लगभग 5,000 रुपये की एक डब्बे से। जितने लोग हमारे साथ मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, उनकी स्थिति यह है कि आम तौर पे 5-7 डब्बों से काम शुरू करते हैं, यानी 15-20 हज़ार रुपये का प्रोजेक्ट। साल भर में वो 5 डब्बों के 20 डब्बे बना लेता है, 2 साल में 20 के 80 हो जाते हैं, और 3 साल में 250-300 डब्बे उसके पास होते हैं। एक डब्बा 5,000 रुपये की सेविंग दे रहा है, तो यदि 100 डब्बों की भी बी कीपिंग यदि कोई बच्चा कर रहा है, तो 5-6 लाख रुपये उसको साल भर में बच जाते हैं। इसका प्रशिक्षण भी 12 महीने यहाँ चलता है। ये कठिन काम है, मुश्किल काम है, हर आदमी के बस की बात नहीं है। फील्ड का प्रशिक्षण है, और इसमें सही माने में प्रशिक्षण होने के लिए लगभग 1 साल का समय चाहिए होता है। आज हमारी स्थिति यह है, गुरुदेव ने एक जगह लिखा हुआ है, आने वाले समय में भारत देश का काम चीनी के बजाय शहद से चल जाएगा। वर्ष 95 में पालतू मक्खी का शहद इस देश में ना के बराबर था। आज 2011 की स्थिति यह है कि 2011 में भारतवर्ष का शहद का प्रोडक्शन 1.25 लाख टन है। मित्रों, जिस गति से काम बढ़ रहा है, इसमें रोजगार की संभावनाएं, रोजगार भी नहीं, हायर इनकम ग्रुप की संभावनाएं, अधिक पैसा बनाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं जो लोग इसमें मेहनत कर सकते हैं। अभी जो 1.25 लाख टन शहद की बात कर रहा हूँ, वो लगभग लगभग 50,000 बच्चे इसमें काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, परंतु अभी भी 50-60 लाख लोगों की इसमें आवश्यकता है। जहाँ कहीं भी आपको जुझारू बच्चे दिखाई दें, बेरोजगार बच्चे दिखाई दें, इस काम के लिए भेज सकते हैं। उनका प्रशिक्षण जब भी आप किसी को भेजेंगे, केवल एक ही काम कराना है कि 9 दिन का साधना सत्र पहले कर लें, उसके बाद में 9 दिन का रचनात्मक सत्र कर लें, तो उसके बाद हम उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए फील्ड में उन मधुमक्खी पालकों के पास ही भेजते हैं जो लोग बहुत बड़े स्तर पर इस काम को कर रहे हैं, जिनके पास 2-2, 3-3 हज़ार डब्बे मधुमक्खी पालन के हैं। मित्रों, ये कुल मिला के जितने विषय हैं, इनमें भी इसी साल एक नया विषय हम लोगों ने जोड़ा है, हथकरघे का। गुरुदेव ने आंवलखेड़ा में ही, आपको जानकारी होगी, बुनता घर चलाया था। तो कपड़े में कितना स्वावलंबन है, उसको अभी हम लोगों ने रिसेंटली शुरू किया है। उसका 3 महीने का प्रशिक्षण हमारा है, उसके लिए भी आप लोग जानकारी ग्राम प्रबंधन विभाग से कर सकते हैं। कुल मिलाकर के जितने स्वावलंबन के सूत्र गुरुदेव के हैं, उसमें आप अपनी साइकिल यात्रा में एक बात पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आज भारत के प्रत्येक नवयुवक के लिए मिशन के पास काम है। किसी भी एक युवक को खाली बैठने की आवश्यकता नहीं है। बेरोजगारी का दूर करने का कोई सूत्र यदि कोई एक मिशन दे सकता है तो गायत्री परिवार है, और इस समय इस सब की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यहाँ निःशुल्क उपलब्ध है। मैं बार बार इस बात पे जोर दूंगा कि जहाँ भी आप जाएं, बेरोजगारी की बात सुने, तो आप उन बच्चों को सीधे अपना एक पत्र लिख के यहाँ के या तो युवा सेल में भेज दें, या रचनात्मक प्रकोष्ठ में भेज दें, या ग्राम प्रबंधन विभाग यूनिवर्सिटी में भेज दें। आज की तारीख में कोई बेरोजगार शब्द बचना नहीं चाहिए, गायत्री परिवार का इनारा है। मैं अपनी बात यहाँ समाप्त करूँगा। यदि कोई प्रश्न हो तो लिख के यहाँ भेज दें, थोड़ा समय अभी है, अपनी बात को मैं यहीं विराम देता हूँ। ओम शांति शांति। देखो, 100 साल की मेहनत है हमारी नस्ल बिगाड़ की, वो एक दिन में ठीक नहीं हो सकती। गौ पालन के लिए ये आपत्ति काल है। हम लोग कृत्रिम गर्भाधान को प्रोत्साहित नहीं करते, परंतु इस आपातकाल में कोई और विकल्प नहीं है। कृत्रिम गर्भाधान में केवल एक बात का ध्यान रखें कि भारतीय नस्ल की गायों का ही सीमन प्रयोग करें। कोई वजह नहीं है कि आप 3 पीढ़ियों में 15 लीटर दूध तक गाय पे ना पहुंचा पाए, कोई वजह नहीं है। सांड की व्यवस्था करने का प्रयास करें, सांड उपलब्ध बहुत कम है। हम ही लोग बमुश्किल तमाम 4 साहिवाल के सांड यहाँ लाए हैं। अपनी दूसरी जो गौशालाएं हैं वहाँ पर हम लोग दूसरी रेड सिंधी, गिर, काकरेज वगैरह की व्यवस्था कर रहे हैं। आपको मैं जानकारी और दे दूं, समय कम था, सारी बात नहीं हो पाई, कि ब्राज़ील में जो सबसे अच्छी नस्ल की गाय मानी जाती है वो हमारी रेड सिंधी है। रेड सिंधी भारतीय नस्ल है। लैटिन अमेरिका में काकरेज है, यहीं से गई है, उन्होंने उसी को विकसित किया है। और लैटिन अमेरिका में काकरेज की जो यील्ड है वो 9,150 लीटर प्रति वर्ष है, 9,150 लीटर प्रति वर्ष। ठीक है, तो अभी AI कराना हमारी मजबूरी है। जब तक सांड की व्यवस्था ना हो AI कराएं। जितने भी बातें बताई गई हैं, जो कार्यक्रम हैं, इसमें 1 साल का जो डिप्लोमा कोर्स है ग्राम प्रबंधन का, उसकी योग्यता है 12वीं क्लास पास। इसके अलावा जितने और कोर्सेज हैं उसमें कोई योग्यता का बंधन नहीं है। 9 दिवसीय सत्र, 45 दिवसीय सत्र, हथकरघा, लिखना पढ़ना भर जानते हों, जो कुछ बताया जाए उसे लिख सकते हों, उन सब के प्रशिक्षण के लिए कोई क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। गाय के बदले लोग भैंस पाल रहे हैं, भैंस को लिए क्या योजना दी जा सकती है? देखिए, दूध पीना है, आप एक दिन में भैंस को ख़त्म नहीं कर सकते। भैंस के लिए योजना चली हुई है, भगवान ने चला रखी है, आपने नहीं चला रखी। भैंस दूध देते ही जहाँ बंद किया दूध देना, वहाँ उसकी कीमत यदि 20,000 है तो मांस में उसकी कीमत 50,000 है। उसे काटने वाले लिए जा रहे हैं। भैंस का मिलना भी भारतवर्ष में 5-7 साल में मुश्किल हो जाएगा। प्लास्टिक कचरे को रिसाइकलिंग के लिए हम लोग कबाड़ी को बेच रहे हैं। जहाँ कहीं भी आप कचरा इकट्ठा करेंगे तो जो ना गलने सड़ने वाला कूड़ा है वो इतना मिल जाता है शहरों कस्बों में कि उसी से आपकी कलेक्शन कॉस्ट निकल आती है। ये प्रोग्राम भी हम 1-2 जगह नहीं, 10-20 हज़ार जगहों पर कर रहे हैं और ये वायबल प्रोग्राम है। गौमूत्र से कीटनाशक कैसे बनाएं, इसका भी प्रशिक्षण है। बहुत सारे आइटम हैं जिसको आप देखेंगे जो रिपेलेंट हैं, जैसे नीम है, कद्दू का पत्ता है, बोगनविलिया का पत्ता है, गोबर है, इन सबको कैसे सड़ाएं, कितने दिन में सड़ाएं, कैसे कंसंट्रेट करें, इसका पूरा प्रशिक्षण है, यहाँ दिया जाता है फ्री। हमारे क्षेत्र में जर्सी फ्रीजन नस्ल की गाय पाली जाती हैं तो 20-25 लीटर दूध देती हैं। अब इन संकर गायों को किस नस्ल का सीमन दिया जाए ताकि दूध उत्पादन एवं देसी गाय संवर्धन दोनों कार्य एक साथ हो सकें? देखिए, बहुत ही अच्छी बात है, जो जर्सी और फ्रीजन गाय हैं इन गायों में कोई बुराई नहीं है। विदेशी नस्ल की गायों में बुराई नहीं है, बुराई है हमारा वातावरण उनके लिए अनुकूल नहीं है। जो लोग जिनकी ये नस्लें हैं ये उन देश के लिए बहुत अच्छी हैं। जर्सी और फ्रीजन वहीं पलें जहाँ पल रही थी, इनके लिए हमारा वातावरण अनुकूल नहीं है। आपका अनुभव है कि जर्सी और फ्रीजन 4-5 बार से ज़्यादा नहीं ब्याह पाती हैं। तो इससे जो गलती हो गई वो हो गई, अब इनकी भी क्रॉस साहिवाल, रेड सिंधी, गिर, काकरे से कराएं। और इनकी जो शंकर नस्ल अब देसी से विदेशी की तरफ को चली थी, अब उसे विदेशी से देसी की तरफ को ले आएं। हमारी क्लाइमेट में हमारी गाय बहुत अच्छी हैं। इस बात को कह के हमें खुश नहीं होना चाहिए कि विदेशों में गाय गाय नहीं है। सही माने में गौपालन वही लोग कर रहे हैं जहाँ पर गाय की यील्ड 20, 25, 30, 40 लीटर प्रतिदिन है। हमें उनसे सबक लें और अपनी ही गाय को यहाँ बढ़ावा दें। हमारी वातावरण में, हमारी जलवायु में हमारी जो देसी नस्ली गाय हैं, और वो भी हमारी तो प्रदेश विशेष की अलग अलग गाय हैं। हर क्लाइमेट की अलग अलग गाय भारतवर्ष में है। मालवा की मालवा में है, काकरेज की अलग है, थारपारकर अलग है, हरियाणा में अलग है, रेड सिंध अलग है। तो अपनी नस्ल को ही तरजीह दें। अपनी नस्ल की जो एक ख़ास बात है वो ये है कि आप लोगों में से बहुत से लोग आजकल पढ़ रहे होंगे कि देसी नस्ल की गाय का जो दूध है वो A2 प्रोटीन युक्त है, और A2 प्रोटीन मिल्क दुनिया में 3 गुना भाव बिकता है। आपको ये यकीन हो जाना चाहिए, यदि आप अपनी देसी नस्ल की गायों का दूध बढ़ा देंगे तो 5 साल बाद ये दूध 100 रुपये लीटर भी आपको नहीं मिलेगा, कितना भी आप बढ़ा लें। क्यों? इस दूध की गुणवत्ता दुनिया में सर्वोत्तम है। नॉट ऑन इतना ही नहीं, इसके साथ साथ जो गोबर और गौमूत्र का प्रयोग है वो केवल और केवल देसी नस्ल की गायों का ही होता है। दवाइयों में संकर नस्ल की गाय या विदेशी नस्ल की गाय, जिनका हम्प नहीं होता, जिनके ठाँट नहीं होती, वो प्रयोग नहीं हो पाता। ये वैज्ञानिक कारण है, ये कोई श्रद्धा की बात नहीं। बिल्कुल किया जा सकता है। हाँ, पहली चीज तो यह है कि केंचुआ खाद अपने आप में बदबू निरोधक है। कहीं पर भी बदबू हो, आप केंचुआ खाद घोल के उस पर छिड़क दें, बदबू वहाँ की वहीं रुक जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज, गाय का गोबर गौमूत्र दोनों चीज़ ऐसी हैं, जहाँ भी बदबू का ढेर होगा वहीं छिड़क दीजिए, वहीं बदबू रुक जाएगी। तीसरी बात यह है कि एक मोहल्ला कचरा इतना कम होता है, ये तमाम शहरों में इसका प्रयोग हो रहा है, कम से कम 6,000 जगह पर केवल अकेले दिल्ली में काम हो रहा है। सोसाइटीज में, सोसाइटी के पार्क में ही आप इस काम को करें, घर घर से कूड़ा इकट्ठा कराएं, उनको सेग्रीगेशन की ट्रेनिंग दें, वो आपको न सड़ने वाला कूड़ा अलग दे दें, सड़ने वाला अलग दे दें, तो न सड़ने वाले का आपको दाम मिलता जाएगा, हर हफ्ते बेचते रहें, सड़ने वाले का उसी मोहल्ले में आप कंपोस्ट बना के उसी मोहल्ले में गमले वालों को बेचते रहें। ये प्रयोग अब अनेकों जगह पर हो रहे हैं और इसका पूरा प्रशिक्षण यहाँ पर है। यहाँ का सारा कूड़ा पूरे शांतिगुंज का जाता है गौशाला। आप लोग गौशाला जरूर विजिट करें, कूड़े करकट के कार्यक्रम को ज़रूर देखें, और वहाँ ये देखेंगे कि वहाँ कितनी बदबू है। अभी हम लोगों का प्रयोग चल रहा है, कोशिश हमारी ये है कि सुबह को घूमने वाले लोग उसी में जाया करें तो ज़्यादा अच्छा पार्क बन जाएगा। और कोई चीज
बोले? परम पूज्य सतगुरुदेव की
जय।
परम वंदनीय माता जी की। अभी हमारे भाई लोगों ने थोड़ा सा जो प्रश्न किए हैं, कुछ और अतिरिक्त जानकारी जो आदर्श ग्राम से संबंधित है, सदैव डॉक्टर साहब से हमने निवेदन किया था कि वो आदर्श ग्राम के अंतर्गत स्वावलंबन प्रधान बात कर लें, तो वो महत्वपूर्ण बात है। उनने गौपालन, फिर आपका मधुमक्खी पालन और कचरे प्रबंधन की बात आपसे की है। ये तीनों ही क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में पर्याप्त स्वावलंबन के अवसर हैं। जैसा आदरणीय सिंह साहब ने कहा कि श्रम मूलक कार्य हम लोग नहीं करते, शेष चीज़ें हम बहुत रुचि रखते हैं पैन चलाने वाली, इसलिए तीनों काम ऐसे हैं जिसमें करोड़ों लोगों को रोजगार दिया जा सकता है और हमारे भाई जाते हैं तो सामान्यतः ये पूछते हैं कि गांव में जाएंगे लोग रोजगार की बात करेंगे तो हम क्या बताएं, गायत्री परिवार क्या रोजगार उपलब्ध करा रहा है? तो आपने बताया 3 करोड़ लोगों के लिए तो कचरा प्रबंधन में, और फिर गौ पालन और मधुमक्खी पालन में और करोड़ों लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। और भाइयों, आदर्श ग्राम के जो शेष सूत्र हैं, प्रारंभ में सिंह साहब ने आप सबको बताए थे, 7 सूत्र उन्होंने बताए थे, तो शेष जो सूत्र हैं उन सूत्रों से संबंधित जानकारी 12 तारीख को आंदोलन से संबंधित एक गोष्ठी होगी, एक उद्बोधन होगा, उसमें आप सब तक पहुंचाई जाएगी। और आदर्श ग्राम कैसे बने, उसमें कौन कौन से काम करें, इसकी पूरा मटेरियल ब्रोशर आपको हम उपलब्ध कराएंगे। ये 12 तारीख को आपको ये सारी चीज़ें इकट्ठी उपलब्ध कराएंगे, जिसमें वृक्ष गंगा अभियान की जानकारी, बाल संस्कार शाला की जानकारी, आदर्श ग्राम की जानकारी, और आपके इसके अलावा और भी जो अभियान चल रहे हैं उन सब की जानकारी आपको ब्रोशर्स के माध्यम से और उस आंदोलन के उस एक कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाएगी। आपको सेट बना करके उसकी सारी चीज़ें देंगे। ये जो भी यहाँ चल रहा है इसकी भी रिकॉर्डेड एक कैसेट आपको सीडी के रूप में कार्यालय यहाँ पर स्टॉल पर उपलब्ध रहेगी, वहाँ से आप क्रय कर पाएंगे। कुछ ऐसा संदर्भ साहित्य है जिसे आपको नोट कराएंगे, और आज शाम को हम आपको सारी चीज़ें नोट करा देंगे, तो वो साहित्य आप पूर्व से ही खरीद लें और उसको पढ़ते रहें। बीच बीच में आपके पास जैसे अभी 3:30 से लेकर के 6 बजे तक का समय आपको है, 6 बजे से यहाँ नादयोग का क्रम होगा, आपको पुनः आना पड़ेगा, परंतु इस बीच में आप कुछ ऐसा साहित्य जरूर पढ़ें जो आपको आने वाले दिनों में प्रशिक्षण देने में सहयोग करेगा। तो हम आपको कुछ साहित्य की सूची बता देंगे, वो साहित्य यहाँ स्टॉल पर उपलब्ध है, वहाँ से आप प्राप्त कर पाएंगे। और बाकी चीज़ें आपके बहुत सारे मन में कई बातें घूमड़ रही होंगी, जैसे साइकिल कैसी होगी, तो उसका एक नमूना, एक प्रारूप यहाँ रखा हुआ मिलेगा, उसे आप देख पाएंगे और वैसी ही साइकिल आप अपने यहाँ जाके बनाएंगे। तो इस तरह से हर चीज़ को लगभग कोशिश ये हो रही है कि आपको गीत कौन से आप नोट करते जाएं। जैसे आज भाई साहब लोगों ने गीत गाए, दोनों गीत हमारे गांव के लिए बहुत ही अच्छे गीत थे, तो ऐसे गीतों को भी आप नोट कर लीजिए, गीत की पुस्तक से इन गीतों का अभ्यास कर सकते हैं। जैसा भैया ने बताया कि ढपली से प्रयोग कराया जा रहा है, बाकी कोई साज नहीं बजाया जा रहा है यहाँ, इसलिए कि आपके मन में ये बात आ जाए कि ढपली के मात्र ढपली और खंजीरे और झांझ के प्रयोग से आप गाँव में एक अच्छी बात कह पाएंगे। तो आदर्श ग्राम से संबंधित शेष जानकारी युवा प्रकोष्ठ के माध्यम से आपको समय समय पर हम आपको उपलब्ध करा देंगे बहुत सारा मटेरियल। शांति पाठ करें
कि सामाजिक आदर्श को कैसे गांव में स्थापित किया जाए और गांव को आदर्श कैसे बनाएं, उसके आदर्श और सिद्धांत क्या हैं, तो वो उन पुस्तक में आपको उपलब्ध हो जाएंगे। शांति पाठ करते हैं सब लोग। ओम देहु शांतिरंतरिक्षग्वं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वग्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।